الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات بتائی گئی تھی کہ انہوں نے سواری کے لیے کام آنے والے گھوڑوں کی اللہ کے واسطے قربانی کر دی، اللہ نے اس کے بدلے کے اندر ان کو ہوائی سفر کی نعمت عطا فرمائی. ایک بہت بڑا تخت بنا ہوا تھا، تخت کے معنی بیٹھنے کی بنائی ہوئی کرسی. وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ جس میں ہزاروں آدمی بیٹھ سکتے تھے، اتنا عالی شان، اتنا بڑا وہ تخت تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب سفر میں جانے کا ارادہ ہوتا تھا تو حضرت اس تخت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور حضرت کے ساتھ آپ کی پارلیمنٹ کے تمام ممبر اور منسٹر لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے. پورا دربار، بادشاہوں کا دربار لگتا تھا، پورا دربار اور درباری لوگ بھی ساتھ میں بیٹھ جاتے تھے اور اس میں ہزاروں آدمی ہوتے تھے. جب سب لوگ تخت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کو آرڈر کرتے تھے اور ہوا حضرت کے پورے تخت کو اڑاتی تھی اور اڑا کر کے ہوا جہاں جانا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں لے جاتی تھی. یہ ایروپلین، یہ تو آج دنیا کے لوگوں نے دیکھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہوا میں اڑتا تھا وہ تو ایروپلین سے بھی زیادہ کیپیسٹی والا تھا. آج تک دنیا کی کسی کمپنی نے، بوئنگ نے یا ایئر بس کمپنی نے، ایسا کوئی پلین نہیں بنایا جس میں ہزاروں آدمی بیٹھ سکے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس میں ہزاروں آدمی بیٹھ سکتے تھے. اس کے لیے رن وے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اندر فیول، پیٹرول، کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت بیٹھتے، آپ کے تمام ساتھی لوگ بیٹھتے، ہوا کو آرڈر ہوتا تھا اور ہوا اس کو اڑانا شروع کر دیتی تھی اور اتنی تیز رفتار سے، اتنی اس کی اسپیڈ تھی کہ कि एक महीने के अंदर हम जमीन पर जितना सफर कर सके इतना सफर वो तखत हवा में सुबह से लेकर दोपहर तक में कर लेता था। एक महीने का कंटिन्यू सफर जमीन का, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तखत, सुबह में उड़ते थे दोपहर के अंदर इतना सफर पूरा हो जाता था। चुनांचे आप बैतुल मुकद्दस के पास रहते थे, वहां से सुबह में निकलते तो एक महीने की दूरी के ऊपर अस्तखर नामी एक शहर था, वहां जाकर के आप दोपहर का खाना खाते, कैलूला करते, आराम फरमाते, फिर दोपहर के बाद तख्त को हवा में उड़ाते और रात के वक्त पर, शाम के वक्त पर काबुल पहुंच जाते थे। गोया दो महीने का सफर एक दिन के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर कर लेते थे। ऐसी अजीब अल्लाह ताला ने उनको नेमत अता फरमाई और ये नेमत उस कुर्बानी की बुनियाद पर अता फरमाई। जब ये तख्त हवा में उड़ता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर नीचा कर लेते और सर झुका के बैठे रहते और बैठ करके अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह का शुक्र करते कि अल्लाह तूने इतनी अजीम शान अजीब नेमत तूने मुझे अता फरमाई कि ये तख्त के ऊपर बैठ करके मैं उड़ता हूं। उसका शुक्र दिल दिल के अंदर करते रहते हैं और जबान के ऊपर अल्लाह का जिक्र होता था और ऊपर से जो धूप लगती है तो उस धूप को रोकने के लिए बड़े बड़े परिंदे अपने पर को खोल करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के ऊपर साथ में उड़ते थे। सैकड़ों परिंदे सब अपने पर खोल देते और खोल करके सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके तख्त के ऊपर साया कर देते और वो भी तख्त की स्पीड के साथ साथ उड़ करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत करते। और हजरत का हाल देखो, गर्दन नीची है, न इधर देखते न उधर देखते, न किसी के साथ बात करते, बिल्कुल शुक्र में, अल्लाह ये तेरा शुक्र है तूने ये नेमत दी, और जुबान के ऊपर अल्लाह का जिक्र होता था। अब इस चीज से हमको एक अदब सीखने को मिला, अल्लाह हवाई जहाज में हमको बिठावे तो हम भी तो वहां बैठ करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें। शायद हम में से कोई बाकी नहीं जिसको ये नेमत नसीब नहीं हुई हो। अब वो तो पूरे सफर के अंदर सर नीचा करके शुक्र भी करते जिक्र भी करते। हम अगर इतना नहीं कर सके तो हवाई जहाज के सफर में कुछ वक्त ही सही, 10 मिनट, 15 मिनट, 8 घंटे का सफर है, 6 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है, तो 15 मिनट, आधा घंटा जरा अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। ए अल्लाह तूने दुनिया की बेहतरीन सवारी हवाई जहाज वाली नेमत तूने हमको अता फरमाई, वहां बैठे बैठे हम अल्लाह का जिक्र कर ले, कुछ तस्बीह पढ़ ले, कुछ कुरान पढ़ ले, तो भी अल्लाह के नबी की एक सुन्नत अदा हो जाएगी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ करके तशरीफ ले जा रहे हैं और नीचे एक आदमी जमीन के ऊपर हजरत के तख्त को देख रहा है। एक मोमिन बंदा था जो आपके ऊपर ईमान लाया था, उसने देखा तो उसके दिल के अंदर हसरत पैदा हुई कि काश के मेरे पास भी ऐसा हवा में उड़ने वाला तख्त होता। जैसे कि आपके यहां तो ये चीज नहीं है, वहां अपने यहां हिंदुस्तान में एक हेलीकॉप्टर भी आ जावे तो सब बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कोई एरोप्लेन जा रहा हो तो सब लोग देखने निकलते, देखो एरोप्लेन जा रहा है, नई चीज है लोगों के वास्ते। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त में उड़ के जा रहे हैं तो एक अल्लाह का बंदा जमीन पे खड़े होके हसरत और अफसोस से देख रहा है, काश के मुझे भी इसमें बैठना और उड़ना नसीब होता, ऐसा कोई तख्त मेरे पास भी होता। उस मोमिन बंदे के दिल में ये ख्याल आया और अल्लाह ने वही के जरिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतला दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तख्त नीचे उतारो, नीचे उतारा। उस मोमिन बंदे के पास गए, उस मोमिन बंदे की मुलाकात की और पूछा, तेरे दिल में ये ख्याल आया था ने कि काश के मेरे पास ऐसा तख्त होता तो मैं भी हवा में उड़ता। उस मोमिन बंदे को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, ए मेरे दीनी भाई, तेरी जुबान के ऊपर जो ये बात आती है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये जो तू जिक्र करता है जमीन पर खड़े होकर के, तेरा जिक्र करना ये सुलेमान के तख्त से भी ज्यादा कीमती नेमत है, ये तू समझ लेना। उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिक्र की अहमियत समझाई कि ये तेरा जिक्र, तेरी तस्बीह सुलेमान, उसके तख्त से भी ज्यादा कीमती नेमत है। ये समझा करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे जाने के लिए रवाना हो गए। तो अल्लाह ने एक नेमत ही अता फरमाई, दूसरी नेमत, वअसलना लहू आइनल क़ितर, तांबे का चश्मा अता फरमाया। ये पहनने का चश्मा नहीं, पानी जो बहता है ना उसको उर्दू में चश्मा कहते हैं, गुजराती में झरना उसको कहते हैं, इंग्लिश मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। तो पानी का चश्मा, पानी का बहता हुआ झरना, अरबी में उसको आयन कहते हैं, वो अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को अता फरमाया। ये तांबे का था, हमारे यहाँ पानी के होते हैं, ये तांबे का चश्मा सुलेमान अलैहि सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया था। जैसे पानी बहता है, उनके उस चश्मे के अंदर तांबा पानी की तरह बहता था। और कितना लंबा ये चश्मा था, का यमन की जो कैपिटल है सनआ, उसको सना सना कहते हैं, सनआ है असल, सनआ से ये चश्मा निकलता था। और तुम चलते रहो चलते रहो, 72 आवर्स चलो, इतने दूर तक वो चश्मा जाता था तांबे का। और ये चश्मा अल्लाह ने इसलिए अता फरमाया था कि उसमें से सुलेमान अलैहि सलाम पिघला हुआ तांबा लेते और लेकर के उसमें से बर्तन बनाते, बर्तन बना करके उसको बेचते और हलाल रोजी से अपनी जिंदगी का गुजरान चलाते थे, ताकि हुकूमत के खजाने से खाना न पड़े। कल जैसे वाकया बताया था कि उनके अब्बा जान दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहीं लेते थे, उनके लिए भी अल्लाह ने रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ने इंतजाम कर दिया कि वो जो तांबे का चश्मा था उसमें से लेते, बर्तन बनाते, बेचते, अपना गुजरान चलाते थे। ये अजीब नेमत अल्लाह ने अता फरमाई थी। एक तीसरी नेमत अल्लाह की, वमिनल जिन्नी मैयामलु बैन यदैहि बिइज्नि रब्बी, जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के ताबे थे, एक दुनी हजारों लाखों जिन हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के लिए काम करते थे। अब ये जिन जो थे ना सुलेमान अलैहि सलाम के लिए, ये कोई जंतर मंतर पढ़ के उन्होंने ताबे नहीं किए थे, बल्कि अल्लाह ने जिन्नातों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए लगा दिए थे कि आप इनके बादशाह हो, इनके पास जो काम करवाना हो तुम काम करवाओ। और ये अल्लाह की तरफ से नेमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते कि जिन्नात उनके लिए काम करते थे, बड़े बड़े खबीस किस्म के भी, और छोटे छोटे भी हर किस्म के जिन्नात आपके लिए काम करते थे, और ये आपका मौजिजा था कि जिन्नात आपकी खिदमत करे, आपके ऑर्डर को माने, आपके लिए काम करे। ये आपका मौजिजा था, ये अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया था। चुनांचे मस्जिद अक्सा है बैतुल मुकद्दस से पैलेस्टाइन में, ये पूरी बनवाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के पास, और बहुत रौब था जिन्नातों के ऊपर। किसी की मजाल नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माने, अजीब रौब था। कैसा रौब था? ये रौब भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ था तकवा की बुनियाद के ऊपर। कवमई यज़िग मिनहुम अन अमरिना नुज़िकहु मिन अज़ाबिस सईर। जो जिन्नात भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऑर्डर नहीं माने तो उसको अल्लाह ताला आग में डाल देते थे, भड़कती हुई आग में। ये तो आखिरत में उस जिन्नात को सजा होगी, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला की शान ये थी कि एक फरिश्ता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में रहता था, और उसके हाथ में आग का चाबुक रहता था, कोड़ा। जो जिन्नात भी जरा इधर उधर करे, वो फरिश्ता जाकर उसको आग का चाबुक मारता था जिन्नात को। इसीलिए किसी जिन्नात की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑर्डर की इधर उधर करे, क्योंकि बाजू में फरिश्ता है, वो अभी चाबुक मारेगा। ये भी अल्लाह की तरफ से था, और आखिरत की सजा अल्लाह ने बयान कर दी कि जो जिन्नात भी हमारे नबी की नाफरमानी करेंगे, हम उसको भड़कती हुई आग में डालेंगे। अब यहां आयत से हट करके एक बात और बताऊं आपको, जब जिन्नात की बात आई है तो, कि ये लोग जो दुनिया में कहते हैं मैंने जिन्नात ताबे किया, जिन्नात मेरे ताबे हैं, तो क्या हकीकत में ऐसा होता है? ये पॉसिबल भी है जिन्नात को ताबे करना? और ताबे करते हैं तो कैसे करते हैं? इसके ऊपर भी बाकायदा किताबें लिखी हुई है पूरी पूरी इसी मसले के लिए। आकामुल मरजान फी अहकामिल जान नाम की पूरी किताब है इस मसले के ऊपर, और तफसीरों में इसके ऊपर बाकायदा मसाइल लिखे गए हैं जिन्नात के ताबे करने के बारे में। तो मैं एज ए आमिल नहीं, एज ए मुफ्ती मसला बतलाता हूं आपको शरीयत का। बाकी आमिल न हूं ना अमलियात की दुनिया से अपना कोई ताल्लुक है, सब बात कह देता हूं। तो मसला ये लिखा है कि जिन्नात को ताबे करना या ताबे होना ये पॉसिबल है, हो सकता है। जैसे इंसान को लोग पुराने जमाने में ताबे करते थे ना, कि ये मेरा गुलाम है, खरीदते भी थे इंसान इंसान को, बेचते भी थे इंसान इंसान को। इस तरीके से जिन्नात को ताबे करना या जिन्नात का ताबे होना ये पॉसिबल है, हो सकता है। अब कैसे ताबे होते हैं उसकी भी बहुत सारी सूरतें अलग अलग। एक तो जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताबे थे कि अल्लाह ताला किसी नेक बंदे को जिन्नात दे देवे खिदमत के लिए, कि वो जिन्नात उसके पीछे लग जावे कि नहीं मैं आपकी खिदमत करूंगा, आपके पास रहूंगा। तो अगर किसी नबी को मिले जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिले थे तो ये तो मौजजा है। नबी के अलावा भी बहुत से लोगों को, नेक लोगों की खिदमत के लिए जिन्नात रहते थे, जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और भी दूसरे सहाबा के मुतालिक है कि जिन्नात खुद ताबे होकर के उनकी खिदमत करते थे, और इसको उस वली की करामत कहा जाएगा कि ये उनकी करामत है कि जिन्नात खुद ताबे हो गए, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके पास लगे हुए हैं, उनकी सोहबत में रहते हैं, उनके पास बैत होते हैं, उनके पास पढ़ने आते हैं। ये एक करामत कही जाती है। मैंने अपने पढ़ने के जमाने में जब देवबंद में छत्ता मस्जिद में अपने पीर मुर्शिद हजरत अकदस मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास रहना होता था तो हजरत का रूम हॉल जैसा था और हॉल के अंदर एतिकाफ की तरह पर्दा रहता था पूरे साल। एक पर्दे के पीछे हजरत की किताबें रहती थी और वहीं हजरत का पलंग होता था। दूसरे कोने के अंदर एक दूसरा पर्दा होता था, वहां हम सब खादिम तीन चार लोग सोते थे। और एक कोने में एक पर्दा और था जहां हजरत मौलाना इब्राहिम पांडोर साहब सोते थे और हजरत की फैमिली मौलाना इब्राहिम साहब की ऊपर रहती थी, वो रात में ऊपर चले जाते थे। हम खादिम लोग वहां कोने में सोए रहते थे। बहुत सी मरतबा, चूंकि हजरत को रात को इस्तिंजे का तकाजा होता था आखिरी उम्र में बीमारी के जमाने में, तो हम सोते थे लेकिन कान हजरत की तरफ रहते थे सोने की हालत में भी कि कब हजरत आवाज लगावे और उठ के जाना पड़े। बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे, तो मैं वही लुंगी और गंजी में उठ के फौरन दौड़ता, हजरत को इस्तिंजे का तकाजा है, वहां जाके पर्दे के पास देखता हजरत किसी के साथ बात कर रहे हैं कंटिन्यू, कोई मसला या कोई हदीस की बात कर रहे हैं, वहां कोई आदमी नहीं होता। जब मैं पहुंचता तो बहुत सी मरतबा, तो चूंकि हम पढ़ते थे तालिब इल्म थे, तालिब इल्मों को शरारत होती है, तो बहुत सी मरतबा जाके मैं बहुत देर तक सुनता रहता हजरत क्या क्या बोल रहे हैं, सलाम नहीं करता। फिर दो चार मिनट मैंने सुन लिया फिर मैं सलाम करता तो हजरत एकदम रुक जाते हैं, हजरत इस्तिंजा करना है, तो हजरत फौरन कहते जाओ जाओ भाग जाओ। फिर मुझे कहते कि नहीं नहीं इस्तिंजे का तकाजा नहीं है। तब हमें यकीन होता कि हजरत जिन्नातों को कोई बात बतला रहे, मसाइल समझा रहे हैं, हदीस बतला रहे हैं। और ये तो बहुत मशहूर है हजरत मुफ्ती साहब के पास जिन्नातों का आना, बहुत से लोगों को ये तजर्बा भी है। बल्कि हजरत का तकवा का हाल ये था कि बहुत से लोग आकर के जिन्नात के बारे में फरियाद करते हैं, हजरत मेरे घर में जिन्नात है, मेरे रूम में जिन्नात है, मुझे परेशान करता है। तो हजरत इतना कहते कि भाई वहां जाके इतना कह देना महमूद ने सलाम कहा है, इतना जोर से कह देना। और पचासों लोगों का अपना वाकया है कि हमने वहां रूम में जाके घर में जाके जोर से कह दिया कि महमूद ने सलाम कहा है, तो क्या फिर वो जिन्नात हमेशा के लिए भाग गया, फिर कभी सताने के लिए नहीं आया। अजीब हजरत का रौब था जिन्नातों के ऊपर भी। तो इस तरह के वाकयात अल्लाह वालों के साथ होते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के साथ, कि जिन्नात खुद ताबे हो जावे और अल्लाह के नेक बंदों की वो खिदमत करे। जो अगली रात में मैंने हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की थी, तो दिल्ली के अंदर जहां हजरत शाह वलीउल्लाह साहब का मजार है कब्रिस्तान महदियान, कभी दिल्ली जाना हो तो जरूर वहां जाना। हमारे सारे अकाबिर अवलिया अल्लाह की कब्रें वहां पर है, और जहां बैठ करके हजरत हदीस पढ़ाते थे वो दो मस्जिद थी, एक मस्जिद अभी तक वैसी एंटिक बाकी है, अजीब नूरानियत है वहां पर। तो वहां एक बड़े आलिम रहते थे, बड़े आमिल भी थे, अली मोहम्मद, जिनको शेरे मेवात कहते थे। हजरत मौलाना इलियास साहब और हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उन्होंने बहुत काम किया है वहां मेवात के इलाके के अंदर, वो वहां रहा करते थे बहुत साल पहले, अब तो इंतकाल हो गया उनका। एक मरतबा मैं हमारे मोहतमिम साहब के साथ हजरत शाह वलीउल्लाह साहब की कब्र पे गया हुआ था, तो अली मोहम्मद हयात थे, वो दरवाजे के पास खड़े थे, तो हम उनकी मुलाकात करने गए। हमने बताया हम डाबेल से आए हैं, तो कहा अच्छा अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी वानी मंगवाऊं, गर्मी की मौसम थी। तो जहां वो अली मोहम्मद शेर मेवात खड़े थे वहीं बिल्कुल पीछे पुराने टूटे फूटे बैतुल खला थे, अब भी है वो। तो एक आदमी काले जैसा उनके बाजू में खड़ा था, उसको कहा कि जा ठंडा पानी ले आ इन बुजुर्गों के लिए। तो वहां से गया 10 मीटर दूर वहां टॉयलेट में, पुराने टॉयलेट में, और वहां से बेहतरीन ठंडे पानी की बोतल लेकर के आया और आकर के हमको पिलाया। मैं समझ गया कि ये जिन है इनकी खिदमत के अंदर, चूंकि वो बहुत मशहूर आमिल थे और बड़े नेक और मुत्तकी आदमी थे, मैं समझ गया कि ये जिन कहीं से पानी लेकर के आया, वरना टॉयलेट में कहाँ पानी लेकर के आवे, वो भी ठंडा पानी। तो एक शक्ल तो ये होती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की खिदमत के अंदर जिन्नातों को खुद से ताबे करवा देते हैं जो उनकी खिदमत में रहते हैं। दूसरी सूरत बहुत सी मर्तबा ये होती है कि कुरान की आयतों को पढ़ करके या अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं अस्माए इलाहिया, उसका कोई खास अंदाज का वजीफा होगा, मुझे नहीं मालूम है वो क्या वजीफा होता है, उसको पढ़ करके लोग जिन्नात को ताबे करते हैं कुरान की आयत से या अल्लाह ताला के नामों को पढ़ करके। इस तरीके से जिन्नात ताबे करना वजीफे पढ़ पढ़ के, ये जायज काम तो है, लेकिन इसके लिए एक अहम मसला भी है कि नियत ये हो कि मैं उस जिन्नात के साथ ताल्लुक करके ताबे करके लोगों को उसकी तकलीफ से बचाऊंगा, मैं भी बचूंगा और लोगों को भी बचाऊंगा। इस नियत के साथ ताबे करना जायज है। और अगर नियत ये रही कि जिन्नात को ताबे करके मैं खाना मंगवाऊं, फुलानी चीज मंगवाऊं, ये मंगवाऊं वो मंगवाऊं, ये नाजायज और हराम है। कोई फायदा लेने की नियत से, कोई बेनिफिट लेने की नियत से जिन्नात को ताबे करना, ये नाजायज काम है। लेकिन ये नियत हो कि मैं इसके जरिए से जिन्नात की तकलीफ से खुद भी बचूंगा और दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश करूंगा, इस नियत से कुरान की आयत से अल्लाह के नामों को पढ़ करके ताबे करना जायज है। लोग करते भी है और उसमें पागल भी हो जाते हैं। एक तीसरी शक्ल है जिन्नात को ताबे करने की, जो काफिर जिन होते हैं, मुशरिक जिन होते हैं। आदमी जब कुफरिया बात बोलता है, शिरकिया बात बोलता है, तो उससे वो काफिर जिन खुश होते हैं। और जैसे इंसानों में मोमिन है काफिर है, ऐसे जिन्नातों में भी काफिर और मोमिन है। तो जो काफिर जिन है, मुशरिक जिन है, हम कुफर की बात बोलेंगे, शिर्क की बात बोलेंगे, तो काफिर जिन खुश होते हैं। तो एक ताबे करने का तरीका यह है कि कुफरिया बात, शिरकिया बात बोल बोल करके लोग काफिर जिनों को अपने पास लाते हैं और उन काफिर जिनों के पास गंदे काम करवाते हैं। किसी के ऊपर जादू कर देना, किसी के ऊपर टोटका कर देना। आपने एक लफ्ज कभी किसी आमिल के चक्कर में आए हो तो सुना होगा कि आसेबी सहर है। आसेबी सहर का मतलब क्या होता है कि जो जादू जिन्नात के जरिए करवाया जाता है, एक जादू डायरेक्ट होता है और एक जादू जिन्नात के जरिए करवाया जाता है, इसको आमिलों की लैंग्वेज के अंदर आसेबी सहर कहते हैं। तो ये जिन्नातों के जरिए लोगों पर जादू करवाने का नापाक काम भी करवाया जाता है। और ये कब होता है, आदमी कुफरिया बात बोले, शिरकिया बात बोले और काफिर जिनों को खुश करे और फिर वो काफिर जिन तुम्हारा कोई काम कर देवे कि जाओ फुलाने के ऊपर यूं कर दो, फुलाने के ऊपर ये कर दो। जो आदमी ऐसा करेगा उसका ईमान खत्म हो जाएगा, नऊज़ बिल्ला वो काफिर बन जाएगा। जिस आदमी ने भी ऐसा किया, कुफरिया बात बोली, शिरकिया बात बोली, काफिर जिनों को खुश करने के लिए, वो काफिर है, ईमान से निकल जाता है, ईमान में वो बाकी नहीं रहता है। एक चौथी शक्ल होती है बुरे बुरे काम करके गंदे जिन्नातों को खुश करना। जैसे इंसानों में नेक है बुरे भी है, ऐसे जिन्नातों भी नेक और बुरे हैं। अब बुरे काम करेंगे तो बुरे जिन्नात खुश होंगे। तो बाज लोग क्या करेंगे, बुरे काम करते, मसलन बुरे काम जो है, ये मैंने आमिलों से भी सुना है, किताबों में भी ये लिखा है, ये मन गढ़ंत बात नहीं है कि कुरान की आयतों को औरत के हैज के खून से लिखा जाता है। और काली कुत्ती का पाखाना खाया जाता है, और ऐसे गंदे काम करने का मकसद ये होता है कि गंदे गुनेगार बुरे जिनों को खुश करना और खुश करके उनके पास कोई काम करवाना, ये उनका मकसद होता है। और उसमें बहुत सी मर्तबा ये अमल करने वाले लोग, ये पक्की बात कह रहा हूं, कुरान सामने है कि वो लोग औरत के हैज का खून चाटते भी हैं ऐसे गंदे काम करने के लिए। मसला ये लिखा है कि जो आदमी ऐसे काम करेगा वो आदमी फासिक है, अल्लाह का नाफरमान है, और अल्लाह को वो नाराज करने वाला गुस्से करने वाला आदमी है। इस तरीके से अमल करना नाजायज है, गुनाह का काम है। ये अलग अलग शक्ल मैंने आपको बतला दी जिन्नत को ताबे करने की। बहरहाल ये चीज होती है, लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बतलाऊं ऐसे चक्करों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। आज लोग करने के भी बहुत चक्कर में हैं, करवाने के चक्कर में भी बहुत पड़ते हैं, और हसद जेलस ये इसकी जड़ है। बहुत से लोग आमिलों के पास जाके हजारों रुपये देकर के हसद की बुनियाद पर लोगों पर जादू करवाते हैं। ये अपने ईमान को खत्म करने वाली बात है, अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाली बात है। ऐसा करना, ऐसा करवाना और ऐसी चीजों के चक्कर में पड़ना, सबसे बेहतरीन चीज क्या? वो जो मैंने आपको मसनून दुआएं पहले 2 सालों में बतलाई, और वो अंग्रेजी में भी छपी है, गुजराती में, पढ़ो उसको और उसके पढ़ते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे और फिर चक्करों के अंदर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ ये भी सही है, होता है इस तरह भी। वो तो जिनको ताबे करना उनके लिए, लोग तो इंशाल्लाह ताबे करना नहीं चाहते हैं कि सूरह जिन पढ़ने का अमल होता है। और वो असल बात एक हदीस से चली है, मक्के मुकर्रमा में मस्जिदुल जिन एक जगह है। हुआ ये था कि हदीस में है कि जिंदगी में तकरीबन 6 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों के इज्तिमा के अंदर दावत के लिए तशरीफ ले गए। ये तो सही हदीसों से साबित है कि जिन्नातों के बड़े बड़े इज्तिमा हुए और हुजूर वहां दीन की दावत के लिए तशरीफ ले गए, ईमान की दावत के लिए। उसमें हुआ ये था कि जहां मस्जिदुल जिन बनी हुई है, कभी साथ होंगे तो मैं ले जाके बताऊंगा, छोटी सी मस्जिद है, और किस तरफ है ये मरवा पहाड़ की तरफ से जो रास्ता बाहर निकलता है, उधर से बाहर निकलो तो दूर चल करके वो छोटी सी मस्जिद आती है मस्जिदुल जिन, और वहां पर एक छोटी मस्जिद करीब में मस्जिदुल नखला, नखला के माने खजूर का दरख्त। हुआ ये था कि पहली मुलाकात के मौके पर जिन्नातों ने हुजूर से दरखास्त की कि आप अपना कोई मौजजा बताओ तो हम आप पर ईमान लाए आपके नबी होने के ऊपर। तो जहां हुजूर खड़े हुए थे वहां से कुछ दूर, इतना दूर तकरीबन जितना मस्जिद का बाहर वाला गेट है, वहां एक खजूर का दरख्त खड़ा हुआ था। वो दरख्त अपनी जगह से चल करके आया जहां हुजूर और जिन्नात मौजूद थे, और उस दरख्त ने आकर के गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह के नबी है, और फिर वो दरख्त चल करके अपनी जगह पर वापस चला गया। जिस जगह वो दरख्त वापस चला गया जहां वो खड़ा था, वहां भी छोटी मस्जिद बनी हुई है, उसका नाम है मस्जिदुन नखला। नखला कहते हैं अरबी में खजूर के दरख्त को। उस जगह भी छोटी मस्जिद बनी हुई है। जिन्नातों ने जब ये मौजिजा देखा तो सब ईमान ले आए उसी वक्त के होकर। हुजूर ने उनको जिम्मेदारियां सौंपी, जाओ अपनी अपनी कौमों में जाकर के दीन की तबलीग करो, दीन की दावत दो। फिर अलग अलग मौके पर 6 इज्तिमा हुए, तकरीबन 6 इज्तिमा जिन्नातों के हदीस से साबित है। एक मर्तबा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर ने कहा सहाबा से कि तुम में से कौन आदमी ऐसा है कि जिसके दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी खोट न होवे, कोई कमी न होवे, साफ दिल होवे, ऐसा कौन आदमी है? अब ये बहुत बड़ा सवाल था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नो खड़े हो गए। हुजूर ने कहा चलो मेरे साथ, क्योंकि यहां तो बनावट चलती नहीं। कोई आदमी अपने पीर के पास जावे कहे कि हजरत मेरा दिल बहुत साफ है तो पीर को तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये तो नबी का मामला है, बनावट करेंगे तो अल्लाह के यहां से वही आएगी। तो हुजूर ने भरे मजमे में ऐलान किया था, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी कोई खोट नहीं होवे ऐसा आदमी चले। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद खड़े होके चले हुजूर के साथ। हुजूर उनको लेकर के गए दूर, आबादी बस्ती पूरी हो गई वहां। वहां जाकर के हुजूर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को खड़ा किया, अब्दुल्लाह यहां खड़े रहो, और हुजूर ने गोल राउंड बनाया उनके चारों तरफ अपनी लकड़ी मुबारक से, कहा यहीं रहना, मैं जाता हूं आगे, कुछ भी हो जावे तुम इसके बाहर मत निकलना, बाहर जो निकलोगे तो गए काम से। वहां हुजूर ने खुद राउंड बनाया था, और जिस जगह हुजूर ने गोल राउंड बनाया था वहां आज मस्जिद मौजूद है। अभी इसी उम्र में मैं वहां गया था, उस मस्जिद का नाम है मस्जिदुद दायरा। दायरा अरबी में राउंड को कहते हैं। जहां हुजूर ने वो गोल बनाया था वहां मस्जिद बनी हुई है। अरब लोग ऐसा करते हैं, यादगार में मस्जिद बना डालते हैं। मस्जिदुद दायरा वहां मस्जिद बनी हुई है, और वहीं के ऊपर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के लिए हुजूर ने वो गोल राउंड बनाया था। फिर हुजूर आगे चले गए और जाकर के जिन्नातों की मुख्तलिफ जमातें आई, उनको हुजूर ने दीन की दावत दी पूरी रात। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं बड़ी बड़ी आवाज होती थी, शोर, भयानक आवाजें, क्योंकि जिन्नातों की जमातें आ रही है जा रही है, इस्तिमा है। तो कहा मेरे दिल में ये खौफ होता था कि मेरे हुजूर का क्या होता होगा वहां पर, और डर ये था कि अगर मेरे हुजूर को कोई तकलीफ पहुंच गई तो वहां जाकर के सारे सहाबा तो मेरी खबर लेंगे कि तुम साथ गए थे, तुमने हुजूर का ख्याल नहीं किया। का ये डर मुझे सता रहा था, और बार बार ये दिल में हो रहा था कि राउंड में से निकल के दौड़ू और देखू मेरे हुजूर का क्या हाल है। लेकिन फिर बात याद आती, हुजूर ने फरमाया निकलना मत यहां से जब तक कि मैं नहीं आऊं वहां तक। तो कहा हुजूर की इस नसीहत ने मुझे वहां रोके रखा और मैं वहां खड़ा रहा। कहा जब पौनी रात गुजर गई, रात का आखिरी हिस्सा हुआ, सुबह सादिक होने वाली थी, हुजूर तशरीफ लाए एकदम सही सलामत। का मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। हुजूर ने आकर के मुझे उस राउंड में से बाहर निकाला, फरमाया पहला सवाल किया अम आका मिनल मा, पानी वानी कुछ है तुम्हारे पास? इसलिए कि तहज्जुद का वक्त हो रहा है, वुजू करना है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। हुजूर जल्दी से पूछ रहे अम आका मिनल मा, पानी है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुजूर पानी तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा रात का सफर था तो मैं नबी साथ में लेकर के आया हूं। ये नबी हुजूर के जमाने का सबसे प्यारा ड्रिंक था, हुजूर भी पीते थे, सहाबा भी पीते थे। ये नबी क्या चीज होती है? पानी के अंदर खजूर डाल दो, या पानी में किशमिश डाल दो, और सुबह में डालो, शाम तक रहने दो, फिर उसको पी जाओ, वो पानी मीठा हो जाता है। ये बहुत हेल्थी भी है और बहुत अच्छा पीने का ये ड्रिंक है, ये सुन्नत है। मैं इस्तांबुल गया था, वहां मरकज पर 5 दिन हम रहे, तो पांचों दिन वहां मरकज के साथियों ने हमको नबीस पिलाई पेट भर भर करके, इस्तांबुल मरकज के ऊपर। रोज फजर के बाद इशराक तक 1 घंटा बयान करने का, फिर साथी लोग मुख्तलिफ जगह पे ले जावे, खाने बैठे तो नबीस जरूर होवे वहां इस्तांबुल के मरकज के ऊपर। तो ये नबीस थी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के पास। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माउन तहुरुन तमरतुन तय्यिबतुन, अब्दुल्लाह पानी तो पाक था ने, और उसमें खजूर भी तुमने पाक डाली, अब इससे वजू करने में क्या हर्ज, लाओ जल्दी से ताकि हमारी तहज्जुद की नमाज न छूटे। जल्दी से हुजूर ने उससे वजू फरमाया। तो ये वो जो राउंड और चक्कर वाली बात है, वो लैलतुल जिन वाली, यानी जिन्नात की तबलीग के लिए जब हुजूर तशरीफ ले गए वहां से ये सिलसिला चला था। इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में अर्ज करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।